श्लोक संख्या 6 दूसरा अध्याय 14 श्लोक मोक्षे द्वेत्म कतरंगो गरियो यद्वा जयेम यजीवानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा रसजीविषां देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा अकार्पण्य दोषो प्रसुद्ध स्वभाव पहले को उच्चारण करते हैं उसी तरीके से इस श्लोक का उच्चारण कार्पण्य दोषो प्रसुद्ध स्वभाव उसी प्रकार से चैत द्विद कतरंगो गरियो यद्वा जयेम यजीवानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा रसजीविषां
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातम् सहगणरघुनाथान्वितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजनसहितम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय।
तो पिछले श्लोक संख्या 5 गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्लोको इस श्लोक से हमारा जो मित्र है छंद छंद में हम गाते हैं श्लोक को पढ़ते हैं श्लोक का उच्चारण करते हैं वो बदल गए। उसके पहले का श्लोक देखिए आप क्या है कथम विश्व महाभूतं के द्रोणं जलं भूगणं साधा छंद साधे तरीके से अर्जुन बता रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को बता रहे हैं सादी सादी बातों में बता रहे क्या मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ मुझे उससे क्या लाभ होगा वही बात इसी श्लोक में कंटिन्यू है कोई नई बात अर्जुन ने नहीं कही उसी बात को कंटिन्यू कर रहे बता रहे केवल क्या बदल गया है पांचवे श्लोक से क्या बदल गया है बोलने का तरीका बदल छंद बदल गया छंद कब बदल जाता है किसी व्यक्ति को मैं हम आपस में बातचीत कर रहे हैं सादी प्लेन भाषा है सीधे तरीके से बात कर रहे परंतु बहुत समय से सीधे तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा विषय है जो किसी जटिल है कॉम्प्लेक्स है तो इतने देर से बात करते 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 उस जटिलता का कोई निराकरण नहीं हो रहा है सोल्यूशन नहीं मिल रहा है
तब तो दोनों में से एक व्यक्ति क्या करता है अरे समझो कब से मैं वही बात समझिए ना प्लीज मतलब छंद बदल गया है ना, बोलने का तरीका बदल गया है। तो यहाँ अर्जुन दूसरे अध्याय के पांचवे चौथे श्लोक तक अनुष्टुप छंद में बात कर रहे हैं, प्लेन बात कर रहे हैं। जब भावनाएं भावुक हो जाता है व्यक्ति, भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है या भ्रमित हो जाता है, बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाता है, तब उसका छंद बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। यहाँ दूसरे अध्याय के पांचवें श्लोक से अनुष्टुप छंद को छोड़ के अर्जुन त्रैष्टुप छंद में बात कर रहे हैं। त्रैष्टुप छंद, त्रैष्टुप छंद, इस छंद की विशेषता है क्योंकि इस छंद में आप देखिए कार्पण्य दोषो पुरुष स्वभाव, तो कितना प्रेम, कितना खजिल है, एकदम परास्त हो गया है जो अर्जुन, अतिशय भावुक हो गया है, भावनाओं का जो इतनी सारे विचार उसके मन में, अर्जुन के मन में उत्पन्न हो गए हैं, अब वो भ्रष्ट हो गया उन विचारों से, इसलिए अभी वो है ना कार्पण्य दोष एकदम गाने लगे हैं, धीरे से और इस प्रकार से अपना जो दुख है वो बता रहे हैं। दूसरे अध्याय के पांचवें श्लोक पर यह श्लोक बताते हैं कि अर्जुन की दशा और गंभीर हो गई है, क्योंकि अर्जुन इतने देर से चर्चा करते आ रहे हैं वही विषय है, कोई विषय बदला नहीं है। इस श्लोक में भी अर्जुन ने वही कहा, कोई दूसरी बात कही है, वही कहा है कि क्या करे, युद्धभूमि में हमारे समक्ष हमारे लोग खड़े हैं, उनको मारना है, क्यों मारना है, उसके लाभ क्या है, वही बात। अब यहाँ पे अंतर ये है, जब व्यक्ति सात्विक स्तर पे रहता है, सात्विक स्तर के लोगों को या व्यक्ति को पता रहता है कि क्या कौन से कर्म करना चाहिए और कौन से कर्मों का त्याग, दो प्रकार के कर्म, एक को त्याग करते हैं दूसरे हम अपना। तो जो सात्विक स्तर पे होता है उसका विशेषता क्या है, उसको पता रहता है कर्म कौन से करना है, वैराग्य क्या है, क्या काम करना है, और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, त्यागना क्या है। और दूसरे राजसिक जो होते हैं, और राजसिक स्तर पे जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि ऐसी होती है, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो सोचते जो त्याग करना है वो त्याग नहीं करना चाहिए, और जो करना है उसको त्याग कर देना, मतलब उनका त्याग और वैराग्य इस विषय के बारे में हमेशा रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत धारणाएं रहती है। कौन से दो विषय के प्रति गलत धारणाएं रहती है, त्याग और वैराग्य, उन दो विषय, त्याग मतलब क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, त्याग और वैराग्य, कर्म और वैराग्य, सर कर्म और वैराग्य, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, राजसिक प्लेटफॉर्म, राजसिक प्रकार के लोग और तामसिक प्रकार के लोग कैसे होते हैं, जो डायरेक्टली जिसका त्याग करना चाहिए उसको अपनाते हैं और जिसको अपनाना है उसका उनको कहते हैं तामसिक। प्रभुपाद महाराज एक उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति को बार बार बताते थे कि भाई आप चैंट, प्लीज चैंट, चैंट द महामंत्र, और वो बोलता था कांट, प्रभुपाद बोलते चैंट, वो बोलता था कांट, उन्होंने चैंट बोलता था कांट, तो वो कांट के बदले जो चैंट के बोलता है, फर्क क्या पड़ता है, शब्द तो वही है, वो होता है कांट प्रभुपाद बोलते चैंट, मतलब जो करना चाहिए उसको नहीं करेगा और जो नहीं करना चाहिए वो पहले करेगा, तामसिक प्रवृत्ति, इसको कहते हैं तामसिक भाव। तो अर्जुन की दशा क्या है, अर्जुन अभी तक जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंड। वो क्या कह रहे हैं हमने बताया था पिछले समय, क्या बताया था, जब अच्छाई या बुराई, जब बुराई अच्छाई के रूप में आ जाए तो वेरी डेंजरस, है ना। रावण बुरा है लेकिन साधु बन के आ गया। बाद में और उदाहरण पुतना। ऐसे संसार में सांसारिक जीवन में एकदम खराब से खराब जो वस्तु होती है, बुरी बेकार, उस वस्तु को लोग बहुत अच्छे रैपर में बांध के देते हैं। समझ में आते हैं, बहुत अच्छा, ऊपर से बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रैपर है। समझना है अंदर ज्यादा खतरा है, ज्यादा बुरी स्थिति है, बहुत अच्छे। तो बुराई जब अच्छाई का रूप लेके आती है तो इट इज वेरी डेंजरस, बहुत भयंकर है। तो कल यह चर्चा हुई थी कि अर्जुन कौन से शास्त्र के ऊपर आधारित बात कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा या मेरे गुरुओं को नहीं मारूंगा। दो शास्त्र है, धर्म और लोग, अर्थशास्त्र। धर्म शास्त्र कहता है कि गुरु की हत्या नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या नहीं करना, और अर्थशास्त्र कहता है यदि फॉल डाउन हो गया तो हत्या कर, यदि अपने स्तर से नीचे गिर गया तो आप कह सकते। तो अर्जुन को हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन राजसिक है, परंतु यह जरूर कह सकते हैं कि अर्जुन मोह के वश में आने की वजह से राजसिक सर जैसी बात कर रहे। तो यहां पे हम इस अध्याय में अर्जुन फिर उसी बात को आगे दोहरा रहा है, लेकिन इस श्लोक में यह पहला ही ऐसा श्लोक है पूरे अभी तक के श्लोकों में, अभी तक हमने जो चर्चा की है, पहली बार अर्जुन ने क्या बोला है, जरा ध्यान से ट्रांसलेशन पढ़िए एक बार फिर पढ़िए। रुकिए, पहली बार अर्जुन यहां कह रहे कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या है। अभी तक क्या कह रहे थे, हम सब जानते हैं। अर्जुन इस तरह से बता रहे थे भगवान कृष्ण को कि जैसे वो सब कुछ जानते हैं और इसलिए युद्ध करना नहीं चाहते, युद्ध नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, क्या जानते हैं, धर्मशास्त्र जानते हैं, गुरुओं को मारना नहीं है, वरिष्ठ जो है उनको मारना नहीं है, उनके साथ कैसे युद्ध है, धर्मशास्त्र। लेकिन यहां पहली बार उनकी दशा यह हो गई है, अभी इतने भावुकता, इतने विचार, इतना मोह उनके ऊपर हावी हो गया है, अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल रहे हैं। उनके मन में शायद ये विचार आया होगा कि भगवान जब बोल रहे हैं युद्ध करो तो निश्चित ही कुछ तो उसमें तथ्य होगा, भगवान बोगस बातें नहीं करते, बिना कारण की बात नहीं करते, बिना कोई रीजन के भगवान बात नहीं करते। भगवान के प्रत्येक कार्यकलाप, प्रत्येक लीला, प्रत्येक शब्द, उसके पीछे कुछ तो राज है। हम भले कुछ भी करते, कभी टाइम पास करने के लिए बोरेली कांदिवली घूम के आ जाते, सिनेमा चले जाते, नहीं 30-30 रुपए जाके घूम के आते टाइम पास कर। भगवान कोई भी कार्य टाइम पास के लिए नहीं, भगवान के प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ तो कारण है, अर्जुन ये जानते। हो सकता है अर्जुन को ये सेंस हो गया होगा कि भगवान जब कह रहे हैं तो उसके पीछे राज, इसलिए अर्जुन यहां कह रहे हैं हम यह भी नहीं जानते, हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। सारे संसार में दुख का कारण यही है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है संसार में, हम सब जानते, हमारा सुनिए, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि एक कोई पार्टिकल, एक छोटा सा कण है, उसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, ये हम जानते हैं। गॉड पार्टिकल। कैसे हुई उत्पत्ति? इस पार्टिकल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम जानते हैं। इतने हजारों सैकड़ों साल उसमें बीत गए, युवावस्था से बुढ़ापे तक आ गए, तो अब पता चला। क्या पता चला? कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक कण से हुई है, एक कण उसका जिम्मेदार है। अब वो कण ने क्या किया, उस पार्टिकल ने क्या किया, कैसे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गई, अब वो हम ढूंढेंगे। नहीं, हम जानते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यही तो है ना, सबसे बड़ा अभी तक पता नहीं था कि पार्टिकल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, अब पता चला पार्टिकल से। अब कैसे उत्पत्ति हुई, उसके लिए हजारों ब्रेन उसके ऊपर काम करेंगे। आध्यात्मिक स्तर पे यदि सोचे तो ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि इतने जनरेशन, कितने सारे जनरेशन टू जनरेशन इतना समय बीत गया, लेकिन किसी को पता नहीं। एवरी टाइम कुछ तो भी नया उत्पन्न होता, फिर भी हम कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई ये ढूंढने के लिए तैयार है। और हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये एकदम बोगस प्रश्न है, बोगस एक्टिविटी है। इसीलिए कहा गया है जो तामसिक स्तर पर रहते हैं उनको यही पता नहीं कि क्या करना है और क्या त्यागना है, किस चीज को अपनाना है, किस चीज को त्यागना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई। वाह, कोई बता सकता है साइंटिस्ट? कोई गॉड पार्टिकल वाला बता सकता है? उनका नाम भी हॉग है, मिस्टर हॉग ने रिसर्च किया है। हॉग है ना, हॉग है एक नाम। हॉग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? यानी तो मैं नहीं, आप डिक्शनरी में देख लें, हॉग मींस व्हाट? एचओजी हॉग, डॉग एंड हॉग मींस। कोई तो बोला कुछ तो, हाँ सुअर कोई बोला, पिग। हाँ, पिग का एडवांस वर्शन हॉग। तो व्हाई दिस नेम, कहने का तात्पर्य यही है कि जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वास्तव में वो नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए। वो यह नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये नहीं जानते। इसलिए वो ढूंढ रहे हैं कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई। जब हो गई है तो प्रश्न ये होना चाहिए कि क्यों हुई, कैसे हुई के चक्कर में लग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एवरी टाइम नया थ्योरी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन यहां कह रहे हैं कि मैं अब ये नहीं जानता, क्या नहीं जानता हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारा लाभ है, हमारी भलाई किसमें है, हमारा जीतने में या हारने में। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आना चाहिए कि मुझे कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं, एकदम नथिंग, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं। हमारे अंदर ये भाव कब आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, जब हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते, सर्वोच्च मानते हैं, तब हमारे अंदर भाव आता है, मैं जब इतना श्रेष्ठ हूं तो मैं सब जानता हूं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उदाहरण है, वो कहते थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहती है, वो क्या कहते थे, कृपा करके मेरे नाम का उच्चारण भी मत कीजिए अपने मुख से, यदि आप मेरे नाम का उच्चारण करेंगे तो आपने जितने पुण्य कमाया है वो सब पुण्य खत्म हो जाएगा, इतना बुरा नाम है, सॉरी सुनेंगे तो मेरा नाम भी मत सुनिए, मेरा नाम यदि सुनोगे अपने कर्णों से अपने कानों से तो आपके सारे पुण्य खत्म हो जाए। और गलती से भी अपने मुख से आपने मेरा नाम उच्चारण कर लिया तो आप नर्क में चले जाओ। इतना बुरा नाम है, इतना निम्न स्तर का नाम। और उनका नाम क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अपने आप को कितना निम्न समझे, कितनी महानता है। तो अर्जुन में अभी इस समय ये फीलिंग, ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं मेरे लिए क्या है। सबसे बड़ा सद्गुण मैं नहीं जानता हूं। दूसरा अर्जुन का दूसरा पॉइंट है, अर्जुन भगवान के भक्त है। पहली बात तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरी बात वो उनके बोलने में ये उत्पन्न हो रही है कि वो भगवान को भगवान मानते हैं, मतलब कृष्ण को मानते हैं, इसलिए वो भक्त है। प्रभुपाद महाराज ने पहले ही अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया है, क्या बताया है कि अर्जुन बहुत सात्विक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उनको भगवान ने ये ज्ञान दिया। इसका अर्थ है अर्जुन भक्त है। पहली बात, अर्जुन सद्गुणी है, उनमें सद्गुण है, वो अपने आप को श्रेष्ठ अभी नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात, वो भक्त है। तीसरी बात, संपूर्ण ज्ञान है, अर्जुन को ज्ञान है। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तक इतना अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं, अब बोल रहे कि अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान है? नहीं, कंफ्यूजन है ना। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन ऐसे अर्जुन ऐसे, अब अर्जुन को ज्ञान है, सद्गुण है, भक्त है, ज्ञान है। क्यों क्यों कहा गया होगा यहां पे? भगवान महाराज ने तात्पर्य नहीं कहा, क्यों ज्ञानी कहा, क्यों ज्ञान है? अभी तक तो चर्चा हो रही थी कि अर्जुन मोह में है, ये है वो है, अचानक क्या हो गया जो ये श्लोक में कोई बता सकता है? इंद्रियों को तो नियंत्रण में, इंद्रिय तो नियंत्रण में नहीं ना, मन कहा नियंत्रण में? अर्जुन का मन नियंत्रण में तो नहीं, नहीं तो वो तो युद्ध बाल चलाने के लिए गए थे वहां पे, बाल एकदम ये भी छोड़ना ही था, डर गए, गिर गए, क्योंकि मन ही तो नियंत्रण में नहीं। उनको ज्ञान, अर्जुन को ज्ञान इसलिए कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह सारी बातें वो किनको कह रहे हैं? उन्होंने अपने बड़े भाई को नहीं बोली बात, उन्होंने भीम को नहीं बोली, उन्होंने किसकी किसी को भी नहीं बताया, अपने माता को भी नहीं बताया। जो कंफ्यूजन है, किसके साथ बात कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के साथ। तो वह व्यक्ति ज्ञानी है जो ये जानता है कि कौन सी बात किसके साथ कर रहा है। जो व्यक्ति ये जानता है कि यह बात इसी इन्हीं से करना है, यहीं से सोल्यूशन होगा। क्योंकि कृष्ण तो सारथी थे, सारथी से बात करने में क्या पॉइंट है? नौकर है, नौकर से क्या बात करें? अपने प्रॉब्लम कोई नौकर से पूछेगा कि भाई इसका सोल्यूशन दो? कोई भी ओनर अपने कार ड्राइवर को अपने प्रॉब्लम का आंसर पूछेगा? तो अर्जुन पूछ रहे, इसलिए उनको ज्ञान है, वो जानते कि भगवान कृष्ण उत्तर दे सकते हैं, इसलिए ज्ञान है। अब देखिए यहां पे इंद्रियों पर जो नियंत्रण बताया गया है, इंद्रियों पर नियंत्रण इसलिए है क्योंकि अभी तक अर्जुन ना तो भिक्षा मांगने गए, ना तो उन्होंने बांध बनाया, अब तक वो सहन कर रहे है? सब कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ परेशानियां है, परंतु उसको रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। रिएक्शन दे रहे हैं अर्जुन? रिएक्शन सुन रहे, समझ रहे, अपने आप में सहन कर रहे। तो सहनशीलता ये भक्त का गुण है, सद्गुण, टॉलरेंस। इसलिए मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। हमने इसके पहले बताया था, जब हम किसी दुख से या क्रोध से आवेग में आ जाते हैं, कभी कभी दुख से, कभी कभी क्रोध से, किसी व्यक्ति के ऊपर हमको क्रोध आ गया है, गुस्सा आ गया है, शुरू। तो मोबाइल नहीं होता तो पहले लेटर आते थे, पत्र लिखते थे, वो पत्र बहुत गुस्सा आया है मुझे, किसी पे गुस्सा आ गया है, मैं पत्र लिखना है, वो ठीक है, पत्र लिखूंगा कब, वो पहुंचेगा कब, तब तक वो शांत हो जाता। नहीं, अब क्या है, अब कैसे लिखते हैं क्रोध बढ़ाने की कृपा के पास, क्रोध या दुख जो भी है। तो इस प्रकार से अर्जुन नियंत्रण किए हुए थे, परेशान मोहग्रस्त थे, लेकिन रिएक्शन समझने का प्रयास। और एक और लक्षण देखिए अर्जुन का यहां पे दिखता है, भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार है भिक्षा मांगने। क्यों? क्योंकि वैराग्य का भी भाव है। रूपांत महाराज तात्पर्य में क्या कहे, यदि ध्यान से आपने तात्पर्य पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। वैराग्य ज्ञान मतलब विद्या और भक्ति, मतलब वैराग्य प्लस ज्ञान प्लस भक्ति इज इक्वल टू मुक्ति या भगवत प्रेम। तो पद्मा के तात्पर्य नहीं, वैराग्य प्लस ज्ञान प्लस तीनों का कॉम्बो पैक, तीनों का कॉम्बिनेशन। कोई बहुत बड़ा वैरागी है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, क्या रूपाल महाराज कहते हैं, हम वेजिटेरियन है, हम नॉनवेज का त्याग कर दिए। तो प्रभुपाद महाराज कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो बंदर भी वेजिटेरियन है, तुम वेजिटेरियन होने में कौन सी बड़ी बात, बंदर भी वेजिटेरियन। तो केवल वैराग्य है, छोड़ दिया ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा, ज्ञान होना चाहिए। अर्जुन को कौन सा ज्ञान, अर्जुन को ज्ञान था कि इनके पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए, कृष्ण को पूछना चाहिए, कृष्ण को अपने जीवन का अविभाज्य घटक बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो हो गया ज्ञान, वैराग्य के साथ ज्ञान और भक्ति। भक्ति मतलब सरेंडर, समर्पण। ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन मैं वैरागी हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, आ जाओ इधर, नमस्कार करो मुझे। तो ये क्या है, ऐसे मुक्ति मिलेगी? भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो, ये कहते हैं मुझे नमस्कार करो, किसको समर्पित होंगे? तो इस प्रकार से वैराग्य, विद्या और भक्ति तीनों जब हमारे पास रहेंगे तब जाके हमको भगवत प्रेम मिलेगा। तो बोलिए, तो वैराग्य तो बहुत कठिन बात है, नहीं? एक शर्ट भी हमने कंटिन्यूअस तीन चार टाइम पहन लिया तो उसके साथ हमको अटैचमेंट हो गया शर्ट। कोई वस्तु पहनने की चप्पल, एक पत्थर भी हमने घर में लाके रख दिया, मतलब आते जाते हैं हमारे दरवाजे पे एक पत्थर पड़ा हुआ देखते हैं, चार दिन देखा, पांचवी दिन भी पत्थर नहीं दिखा तो कहां गया पत्थर? पत्थर वैराग्य कैसे मिलेगा? वैराग्य मतलब क्या? तो आप बोलेंगे प्रभु जी सन्यासी बनाने की आइडिया दे रहे हैं क्या? हम सब गृहस्थ बैठे हैं यहाँ पे, वैराग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हमको? तो वैराग्य का अर्थ है भगवान कृष्ण के भक्ति को प्राप्त करने में जो कुछ भी प्रतिकूल है उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए, उसको वैराग्य। जो कृष्ण भक्ति में प्रतिकूल बातें हैं उसको त्यागना, फिर वो कांदा लहसुन हो या चाय कॉफी हो या और कुछ सिनेमा हो या टीवी हो, कुछ भी हो, उसको त्याग देना, क्योंकि कृष्ण भक्ति में ये प्रतिकूल है। यदि ये कर पाए तो आप बहुत बड़े वैराग्य बाबा हो गए, गृहस्थ होके भी आप वैराग्य हो सकते, गृहस्थ आश्रम में भी आप वैराग्य हो सकते। परंतु जो कृष्ण भक्ति के लिए पोषक है उसका स्वीकार, और जो प्रतिकूल है उसका त्याग, यह वैराग्य। और ज्ञान है भगवान कृष्ण को हमारे साथ कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, यह है ज्ञान। और भक्ति सहनशीलता बढ़ाना, एकदम सहनशील होना, किस लिए? भगवान के साथ भगवान को समर्पित होते वक्त एकदम सहनशीलता से भगवान को समर्पित होना। जैसे अर्जुन सहन ही तो कर रहा है, भले ही मोह उसके ऊपर हावी हो गया लेकिन सहन ही तो कर रहा है ना। कोई रिएक्शन द्रथ के ऊपर से कूद के चला गया जंगल में, नहीं बैठा ही है ना, अभी बात ही कर रहा है, सहन ही तो किया है। ठीक है, तो वैराग्य विद्या और भक्ति, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए। अर्जुन के अंदर ये है, इसलिए उनको भगवत प्रेम, भगवत ज्ञान, भगवत कृपा प्राप्त। अब आप कहेंगे हमको कैसे प्राप्त होगा? इसको हमको भी तो होगा ना, भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन के पास ये गुण थे, भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता उनको समझाई, पूरे 700 श्लोक भगवान कृष्ण जानते थे, इतनी सारी भगवत गीता कलयुग में मेरे से कौन सुनेगा, लोगों को समय कहां रहेगा। 700 श्लोक प्रभु जी आज सुबह से रात को 12 बजे तक भगवत गीता का पारायण है। आइए पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक, केवल एक दिन साल में एक बार गीता जयंती के दिन आइए प्रभु जी, आइए पूरा एक दिन, टाइम कहाँ है, समझ नहीं। तो भगवान ये जानते थे कि ये 700 श्लोक और इनको मुझे सिखाना है वैराग्य विद्या और भक्ति। अर्जुन के पास वैराग्य विद्या भक्ति होने की वजह से कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई, आने वाले कलयुग में सारे जीवों को ये वैराग्य विद्या भक्ति कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि जब तक ये नहीं है तब तक कृपा नहीं है, और ये प्राप्त करने के लिए भगवद गीता सुननी पड़ेगी पूरी 700 श्लोक। कितना समय जाएगा उसमें, लोगों के पास समय नहीं होगा कलयुग में, इसलिए ये पूरे 700 श्लोकों को एकत्रित रस सार बना दिया, पूरा सार निचोड़ लिया 700 श्लोक का, और फिर वो भगवान आ गए क्या सिखाने के लिए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा समहं प्रपद्ये। कौन कहते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन? कृष्ण लीला में कौन? बृहस्पति। सार्वभौम भट्टाचार्य जो वास्तव में बृहस्पति है, बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। वह देवताओं के गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य कलयुग में आ गए, और वो क्या लिख रहे हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। यह वैराग्य विद्या और भक्ति जो कि अर्जुन के पास थी कृष्ण कृपा की वजह से, वही वैराग्य विद्या और निज भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए कौन आ गए हैं? इसकी शिक्षा देने के लिए शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, वह पुरुष, वही पुराना पुरुष भगवान कृष्ण फिर से आ गए। कैसे आ गए? श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, श्री कृष्ण चैतन्य का शरीर लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण आ गए क्या सिखाने के लिए? वैराग्य विद्या और भक्ति। और क्यों? क्योंकि वैराग्य विद्या और भक्ति आ जाएगी तो कृपा, भगवत कृपा, कृष्ण कृपा प्राप्त होगी। चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य विद्या और भक्ति हमको सिखाई। सिखाइए केवल 8 श्लोक। अब आप बोल सकते हैं हमारे पास टाइम नहीं, बोल सकते हैं कि आज समय नहीं, 700 श्लोक ठीक है, 8 श्लोकों के लिए समय है नहीं है। भगवान हमारे से बड़े चतुर, बोले अच्छा आपको क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट चाहिए ना, और छोटी साइज आजकल उसी का जमाना है, और कॉम्पैक्ट साइज, कॉम्पैक्ट साइज ठीक है, 8 श्लोक केवल 8 श्लोक पूरी भगवत मैं जन्म में सुंदर श्लोक है। तो ये 8 श्लोक जो भगवत गीता का सार है, इन 8 श्लोकों का भी सार है, वही भगवान कृष्ण ने बताया, उसका भी सार है, उतना भी 8 श्लोक भी भारी पड़ रहे थे कलयुग में, उसका भी सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यदि हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी आप करते हैं तो ना तो आपको इतना दीप जाने की आवश्यकता है नहीं, महाप्रभु कह रहे केवल आप उस हरे कृष्ण महामंत्र का जब नित्य कीजिए, क्या हो जाएगा? वैराग्य विद्या और भक्ति अपने आप आ। अब देखिए अर्जुन, ये हम भगवत गीता का, आप बोलेंगे फिर भगवत गीता का क्लास ही क्यों ले रहे हैं प्रभु जी। तो भगवत गीता का क्लास इसलिए ले रहे हैं कि देखिए अर्जुन को कितने पापड़ बेलने पड़े वो भक्ति को प्राप्त करने के लिए, और हमको केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुपर कैप्सूल, सारे रोगों का इलाज, सारे सदगुण आ जाएंगे, दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वैराग्य प्राप्त होना है। देखिए इंद्रिय तृप्ति तो जानवर भी करते हैं, तो जानवरों में हमारे एक अंतर है कि नहीं? जानवर भी नित्य इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, परंतु कृष्ण कृपा या कृष्ण भक्ति केवल मनुष्य प्राप्त करते हैं। हमको वैरागी इसलिए बनना है क्योंकि केवल ये मनुष्य ही वैरागी बन सकता है। और वैराग्य की क्या व्याख्या है अभी मैंने बताया, वैराग्य की व्याख्या क्या है? हाँ,
कृष्ण को प्राप्त करने में जो भी प्रतिकूल है उसमें क्या,
भक्ति में जो प्रतिकूल है, भगवान कृष्ण के भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको त्यागना ही वैराग्य है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम, उत्तम भक्ति है जो अनुकूल को स्वीकार करता है। तो यहाँ पे मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो कृष्ण भक्ति तो होनी ही चाहिए, मतलब वो वैराग्य होना ही चाहिए, और वैराग्य नहीं है तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने का लाभ ही क्या है? है कुछ लाभ है, पर यहाँ पे अर्जुन का वैराग्य क्या है? अर्जुन यहाँ सोचते हैं कि हम फिर भी जो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, वो कहते हैं यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं, मतलब अल्टीमेटली कल्याण, हम जीत भी गए हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क, वो मर जाएंगे हमारे आत्मसत्य। यहाँ पे थोड़ा सोचे, उनको जीत से कोई आसक्ति नहीं है, जीत से कोई बहुत बड़ा अटैचमेंट ऐसे कुछ नहीं है, वैराग्य। अब अर्जुन का वैराग्य यदि देखे तो आगे बता, होता है। वैराग्य ऋतु महाराज चौथे स्कंद में श्रीमद भागवतम ऋतु महाराज की कथा है, आपने ध्यान से सुना होगा, कई कई बार इस कथा को बताया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ किया उन्होंने 100 बार महाराज, ऋतु महाराज कौन है, ध्रुव महाराज जानते हैं, नाम किया है, कौन नहीं जानता है, कौन जानता है, जो जानता है वो हरि बोल बोलिए, जो नहीं जानता है वो हरि बोल बोलिए, जानते भी और नहीं भी जानते, ये तो बहुत बड़ी फिलोसफी है, ये तो बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है, जान कर भी नहीं जानना या नहीं जानते हुए भी जानना, बड़ा सीक्रेट है। तो ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज के वंश में पृथ्वी महाराज आते हैं, इनके दादाजी थे अंग महाराज, महाराज अंग, ये अंग महाराज बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, बहुत धर्म कर्म में लगे हुए, अच्छे धार्मिक राजा होने पर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तो पुत्र के प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए, बहुत तपस्या की, उन्होंने बड़े ऋषि मुनियों का संग किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्होंने कहा कि आपको बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया अंग महाराज, महाराज अंग, और बहुत बड़ा यज्ञ करने के पश्चात उनको कोई सफलता नहीं मिली, कोई देवी देवता आए ही नहीं उनके यज्ञ में, उनकी आहुति स्वीकार करने के लिए। सोचिए, अंग महाराज का यज्ञ स्वीकार नहीं हुआ, हमारा यज्ञ होगा? महाराज अंग जिन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया, जिनका यज्ञ भृगु महाराज भृगु मुनि जैसे ऋषियों ने करवाया, उनके यज्ञ में आहुति स्वीकार करने के लिए देवी देवता मिले, तो हम जो यज्ञ करते हैं क्या हमारा हमारे यज्ञ की आहुति स्वीकार करने के लिए देवी देवता आएंगे? ऐसे नहीं प्रश्न। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सारे ऋषि मुनि सोच में पड़ गए कि कैसे होगा, उनकी तो आहुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसे हो रहा है, तो ऋषिगण बताने लगे क्योंकि आपके कुछ पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से देवी देवता आपकी आहुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि आप परम भगवान को प्रणाम करोगे, समर्पित होगे, उनको आमंत्रित करोगे, उनका स्मरण करोगे, तो भगवान जरूर कुछ तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपकी आहुति स्वीकार हो। भगवान कृष्ण के लिए प्रार्थना करने लगे, यज्ञ में आने के लिए प्रार्थना करने लग गए, और थोड़ी देर पश्चात वो देखते हैं कि यज्ञ पुरुष एक आ गए, यज्ञ पुरुष आए, उन्होंने कुछ तो एक ऐसे पदार्थ दिया उनको, प्रसाद, वो प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद प्राप्त किया, और प्रसाद अपने पत्नी को दिया, उस प्रसाद प्राप्त करने के बाद उनको पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या था कौन जानता है, भागवतम तो बहुत लोग सुन सके, रेगुलर भागवत कथा में बड़ा प्रसिद्ध नाम है। देखिए, अपने पिता पिता के कारण पुत्र ने संन्यास ले लिया, मतलब पुत्र घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के नहीं गए, घर छोड़ के चला गया। पिता की इच्छा के अनुसार बोलिया, पिता के कारण, पिता एक कारण है, उनके कारण पुत्र घर छोड़ के चला गया। भगवान भगवान राम भगवान का, लेकिन पुत्र के कारण पिता घर से घर छोड़ के चला गया। कभी सुना है ऐसे भागवत? जिन्होंने सुना होगा उन्होंने सुना। पुत्र के कारण पिता को घर छोड़ के भाग गए, रात को चुपचाप उठ के चले गए। वो है महाराज अंग, इनका जो पुत्र प्राप्त हुआ, यज्ञ देव ने जो उनको दिया, यज्ञ पुरुष ने उन्होंने प्राप्त किया, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका नाम है वेण। वेण 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 उत्पन्न हो गए, लेकिन ये जन्म था ही भयंकर क्रूर राक्षसी प्रवृत्ति। जंगल में जब जाते तो सारे जानवरों को मारते, पुरुषों को मनुष्यों को मारते, इस प्रकार से बड़ा क्रूर था बचपन से। महाराज अंग ने बहुत कुछ उनको संस्कार देने का प्रयास किया, लेकिन खुशी बड़े दुखी। जब भगवान को एखादा भक्त प्रिय होता है, लेकिन वो भक्त बहुत बुरी तरह से संसार में लगा रहता है या लगने की आशंका रहती है, तब भगवान क्या करते हैं, उनको ऐसा पुत्र दे देते हैं कि वो वैरागी बन जाता है। ये ऐसा पुत्र नहीं होता तो महाराज अंग ऐसी रात को एक दिन बड़े बड़े ही दुखी हो गए। दुखी अंतकरण से रात को सोचने पड़ गए, सोचने लगे कि इससे अच्छे तो वो लोग हैं वो जिनको पुत्र ही नहीं है। वास्तव में भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है, इसलिए उनको पुत्र नहीं होते, और इसलिए वो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, भगवान की नित्य सेवा में और भक्ति में लग सकते हैं। वास्तव में भगवान की उनके ऊपर कृपा है। अब मेरा देखिए अंगवान तो वो सोच में पड़े कि ऐसे यदि मैं करता रहूंगा संसार में तो ये पुत्र पता नहीं कहां ले जाएगा, और इसलिए ऐसा सोचते सोचते उन्होंने देखा कि काफी रात बीत चुकी है। देखा पत्नी सोई है, चुपचाप उठे, दरवाजा बंद कर दिया बाहर के, और जंगल में चले गए। राजा किंग शोर के वैराग्य छोड़ के चले गए पूरा राज्य। किस लिए छोड़ा? दूसरा महल बनाने के लिए गए, दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ये वेण ऐसा है पुत्र, इसको ये राज्य दे देता हूं, मैं बाजू के राज्य के ऊपर आक्रमण करता हूं, वो राज्य को प्राप्त कर, ऐसे इसलिए गए। किस लिए? भगवान के प्रेम के लिए। तो भगवान के प्रेम के लिए जो त्याग होता है उसी को वैराग्य। वो चले गए बाद में, पूरे राज्य में एकदम हाहाकार हो गया, और राजा ही भाग गया है रात को। सारे संसार में उन्हें ढूंढा, मिले नहीं कहीं, ऐसी जगह हिमालय में चले गए भगवान का भजन करने में। फिर सारे ऋषि मुनि एकत्रित आए हुए, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यदि राज्य को राजा नहीं है तो चोर उचक के लोग राजे जैसा व्यवहार करते, वो स्वयं अपने आप को राजा मानते हैं और सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। यदि राजा ही नहीं है सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है ना। आपने देखा ईरान वगैरह राजे लोगों को जब पकड़ा जाता है तो बाद में दंगे हो जाते हैं। राजा ही नहीं है तो सब दुख ही दुख। जब उन ऋषियों ने सोचा कि ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है, परंतु महाराज अंग के पत्नी को, मतलब वेण के माता को उन्होंने बुलाया, उनसे पूछा, तो उनकी इच्छा थी कि पुत्र को राजा बनाए, इसलिए वेद को राजा बनाया गया जो कि महाराक्षस था। वो राजा बना लेकिन पूरे राज्य में सारी जनता त्रस्त थी, दुखी थी। ऋषियों ने फिर से सुना कि ये तो सब राज्य में हाहाकार हो गया है। सारे ऋषिगण एकत्रित आए, उन्होंने सोचा कि इसका तो इलाज होना चाहिए। जब ये सारे ऋषिगण वेद को समझाने के लिए गए कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा तो बड़ा दयाशील होना चाहिए, जनता का तो वो सेवक है, तो सब बताने लगे उनको तत्व ज्ञान। वेद उल्टा वेद उनको बोलने लगा कि आपको क्या, आप क्या जानते हो, आपको कौन सा ज्ञान है, आपको पता है ये जो इंद्र चंद्र वायु अग्नि कुबेर देवतागण सारे विष्णु ब्रह्मा महेश ये जो सारे के सारे जो देव देवता देवी देवता है ये सारे के सारे मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए चुपचाप से मेरी पूजा करो, तुमको कुछ पता नहीं है। तुम ऋषियों को वेद ऐसा बोले, जब ऋषियों का ऐसे इस बात का पता हुआ कि अरे ये तो बहुत ही हद तक इनका ज्ञान है, ये तो भगवान बोल रहा है अपने आप, तो ऋषियों ने केवल एक शब्द का उच्चारण किया, उस एक शब्द के उच्चारण से उसका मृत्यु हो गई। अब वेद का मृत्यु हो गया तो फिर राजा का प्रॉब्लम, अब राजा कहां से लाए, इसको तो मार दिया, अब क्या किया। लेकिन वैदिक साइंस, जो शास्त्र साइंस वेद इतने एडवांस है, ये आजकल की टेक्नोलॉजी उसका उसमें का एबीसीडी भी नहीं समझ सकती, वेद का वी भी नहीं जान सकते, ये साइंस नहीं जान सकते। ये तो यहां अभी इतना अज्ञान है, उस ज्ञान के सामने ये इतना अज्ञान है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा अज्ञान। तो उस समय उन ऋषियों ने सोचा कि क्योंकि ये ध्रुव महाराज की परंपरा है, ये जो परंपरा है, जो वंश है, ये बड़ा शुद्ध है, ध्रुव महाराज उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं, इसी वंश का राजा होना ज्यादा उचित है, तो इस वंश में तो अब समाप्त हो गया वंश, वेन को तो मार दिया, अब क्या करें। तो उन्होंने सोचा इस वेन के शरीर से हम एक पुत्र की उत्पत्ति करते हैं। सोचिए, है कोई साइंस अभी ऐसा, कितना भी साइंस, कितने भी कुछ भी करे, कितने भी रिसर्च करे, वो ऐसा डेड बॉडी से उसका वंशज बना सकता है तो क्या फायदा, इतना एडवांस हो कि क्या फायदा, सिंपल वेद पढ़ना चाहिए, हमारा साइंस जो है हमारे शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने काफी उनके हाथों से, उनके पैरों से पहले पैरों के ऊपर मंत्रोच्चारण किया, उस पैरों के ऊपर मंत्रोच्चारण करने के बाद एक व्यक्ति जो उत्पन्न, एक व्यक्ति एक उनके उस पैरों से एक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, एक मनुष्य की, लेकिन बड़ा विचित्र था वो, बड़ा क्रूर चेहरा, हरा पेड़ा था, आंख बड़ी बड़ी थी, काला था, एकदम ब्लैक। तो उसने क्या किया, उस मनुष्य जो पहला जो जन्म लिया उसने पूरी तरह से वेद का जो विषारी शरीर था उसके अंदर जो विष था, कौन सा, विचारों का विष, चरित्र का विष, सारे प्रकार का सारे विष को वो पी के निकाल के बाहर आ गया। इसलिए अब जो शरीर रह गया वो क्या रह गया, शुद्ध शरीर। तो इन ऋषियों ने फिर पूछू, फिर उनके हाथ, दोनों हाथों से मंथन किया हाथों का, और एक हाथ से पृथु महाराज आया, दूसरे हाथ से उसकी पत्नी उत्पन्न हुई, एक स्त्री और एक पुरुष, उन दोनों को, दोनों का ऋषियों ने विवाह किया, और उसकी पृथु महाराज और उसकी वो पत्नी, कथा बड़ी लंबी है, भागवत क्लास बता रहा हूं। तो पृथु महाराज वो महाराज जिनको बड़े बड़े ऋषि भृगुमुनि जैसे ऋषियों ने उत्पत्ति, और ऐसे शास्त्र में भागवतम में कहा गया कि यही पृथु महाराज जब उत्पन्न हुए तब ऋषियों ने देखा उनके चरणों के ऊपर चिन्ह, उनके वक्ष स्थल पे सुमन, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल के जो चिन्ह है वही चिन्ह ने देखा। इसका अर्थ यह है कि पृथु महाराज भगवान विष्णु के विस्तारित रूप। तो ऐसे पृथु महाराज ने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ किया। और कितने नंबर का अश्वमेघ, 100वां अश्वमेघ यज्ञ। यदि ये 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो जाता तो इंद्र की गद्दी छीन ली जाती। इंद्र को हमेशा ये पता चल जाती, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहते थे। अभी कलयुग में इंद्र बड़ा शांत है क्योंकि उसको मालूम है ये कलयुग के जो भक्तगण है बड़े बुद्धिमान, वो सोचता है मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान है, इनको मेरे गद्दी से कोई लालसा नहीं है, इनको डायरेक्ट गोलोक धाम का सीट चाहिए इसलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता, उन्हें भक्त है, वाह 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 बढ़िया करो जब करो इसलिए इंद्र वगैरह की हमको पूजा करने की आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता, सीधा उधर गोलोक धाम। तो इस प्रकार से इंद्र की गद्दी हिल गई, इंद्र सोच में पड़ गया अभी क्या होगा। वो क्या करता, और 100वां यज्ञ पूर्ण ही नहीं होने देता, जो भी आपको घोड़ा जाता अश्वमेघ अश्व जाता ये ब्राह्मण का या साधु का रूप लेके वो घोड़े को चुरा लेता। बड़ी परेशानी हो गई, ये यज्ञ ही पूर्ण नहीं होता। हर बार महाराज पृथु निकलते कि अभी जैसे 100वां यज्ञ चल रहा है अभी फिर से घोड़ा अश्व चुरा लिया गया, तो महाराज पृथु ने पूरी तैयारी कर ली युद्ध कर लो। अब पूरे ब्रह्मांड में जहां होगा वो मिलना ही चाहिए, नहीं तो अब युद्ध करेंगे। पहला अटैक इंद्र के ऊपर आक्रमण, तो इंद्र घबरा गए। परंतु ब्रह्म देव ने पृथु महाराज को कहा कि आप इंद्र को इंद्र के ऊपर आक्रमण, इंद्र को मत मारिए। और यहाँ इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को प्रार्थना की, भगवान विष्णु इंद्र को साथ में लेके आ गए महाराज पृथु के सामने। महाराज पृथु के सामने आते से ही महाराज पृथु के शांत होकर प्रणाम किया और भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम इंद्र के साथ युद्ध मत करो। महाराज पृथु ने प्रणाम किया, आपका आदेश सर्वार्थ आपके आते आज्ञा का पालन है, क्योंकि इंद्र भक्त है, उन्होंने जो भी गलतियां की है उसको क्षमा कर दो। इंद्र ने जब ये सब कुछ देखा, इंद्र बड़ा प्रभावित हो, इंद्र बार बार पृथु महाराज के चरणों की ओर देखा और लज्जित भी हो गया कि मैंने क्या किया, इतने बार इनका घोड़ा चुराया, इतने बार घोड़ा चुराया। लेकिन इंद्र प्रणाम करके क्षमा मांगी और पृथु महाराज क्षमा कर दी। अब यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु ने इंद्र को लाया और पृथु महाराज के सामने और पृथु महाराज ने उनको क्षमा कर दी, युद्ध नहीं की। अर्जुन भी बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि पृथु महाराज भी बड़े कितना बड़ा वैराग्य है ये भी पृथु महाराज का नहीं, पूरा ब्रह्मांड के वो राजा होने वाले थे लेकिन भगवान ने बोल दिया नहीं, तो ठीक है नहीं नहीं चाहिए ब्रह्मांड। परंतु और इसलिए उन्होंने युद्ध भी नहीं किया। परंतु अर्जुन की दशा, अर्जुन बता रहा है अर्जुन भी पृथु महाराज के जैसे ही होना चाह रहे हैं, उन्होंने भी तो युद्ध नहीं किया, मैं क्यों युद्ध करूं। यहां पे फर्क यह है कि इंद्र महाराज पृथु की क्षमा मांगा, क्या दुर्योधन क्षमा मांगा, उनकी क्षमा मांगा कौरवों ने या सुपुत्रों ने, उनको क्षमा नहीं मांगा। दूसरा है इंद्र ने भगवान की बात मान ली, है ना, मतलब इंद्र भगवान को समर्पित हो गया, भगवान विष्णु के पास गया आप कुछ करो और भगवान को लेके। यहां उल्टा है, भगवान स्वयं दुर्योधन के पास गए, कौरवों के पास गए कि ऐसा मत करो, उल्टा उसने प्रकार से अर्जुन भी जो तर्क लगा रहे हैं वैराग्य का, वो वैराग्य भी ठीक नहीं। यहाँ पे भी वो बोल रहे कि हमको पता नहीं है क्या होगा, हम तो जीत भी नहीं चाहते हैं, विजय भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, परंतु इसका पराजय, अर्जुन का पराजय मतलब दुर्योधन का विजय, और वो भगवान कृष्ण के समर्पित। जैसे कि पृथ्वी महाराज हो या इंद्र हो, इंद्र भला ही अच्छा कर्म नहीं कर रहा था, पृथ्वी महाराज को बार बार प्रताड़ित कर रहा था, परंतु भगवान के समर्पित। यहाँ पे ये दुर्योधन या दुशासन या पूरे कौरव कोई भगवान के समर्पित नहीं, पर फिर भी अर्जुन को वैराग्य कहा गया है। वैराग्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कई बार उन्होंने भौतिक सुख को भोगने की इच्छा को त्याग कर दिया। अब आप पहले अध्याय में देख सकते हैं 31वां श्लोक 1.31। मुझे विजय की कोई इच्छा नहीं, कोई मैं इच्छा नहीं रखता हूँ विजय की, ना ही मुझे इसमें कोई, मेरे बांधवों को या गुरुओं को मारने में कोई भलाई नहीं दिखती है, और इनको मारकर मुझे राज्य भी नहीं, वैराग्य है। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने बताया कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मतलब अर्जुन में वैराग्य है। दूसरा 32 और 35, 32वां श्लोक देखिए, किम सुखे न चाहिए, क्यों मुझे सुख भी नहीं चाहिए, वैराग्य है कि नहीं वैराग्य अर्जुन में, वैराग्य है, भौतिक सुख की कोई लालसा नहीं, इस जीवन में भी नहीं और आगे वाले जीवन में भी नहीं मिला तो भी चलेगा, तो वैराग्य है। फिर 43 में देखिए 1.43, लगभग बोलिए अगले जन्म में भी मुझे कुछ नहीं, 43 पढ़िए। उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वो ये जानता है कि जो धर्म का पालन नहीं करते हैं वो प्रताड़ित होते हैं, मतलब वो ये जानता है कि शरीर और आत्मा दो भिन्न चीजें, क्योंकि शारीरिक स्तर पे धर्म का पालन करने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा नरक में नहीं जाता है, आत्मा मतलब वो ये जानता है कि शरीर और आत्मा भिन्न, इसमें शारीरिक स्तर पे जो भी कुछ बातें हैं उसका मुख्य मन में। फिर 1.38, हाँ कुल को नाश करके मुझे ये सब लेने में क्या है, मुझे कोई उसमें क्षय हो रहा, सब लोग जाए में क्या करना, नो ग्रीड, उसको लोभ नहीं है, लोभ ही नहीं है अर्जुन, जो हम मटेरियल भौतिक स्तर पे इंद्रिय भोग के लिए हम जो कुछ भी सोचते हैं और जिसकी वजह से हम आसक्त हो जाते हैं वैरागी नहीं होते, परंतु देखिए अर्जुन में ये सब गुण है। वैराग्य दिखता है अभी, वैराग्य विद्या क्या है,
देखिए सहनशीलता भक्ति हो तो विद्या है। 1.46,
हाँ जोर से कोई तो इसको ट्रांसलेशन पढ़िए। मतलब देखिए कितना सहन कर रहा है, परम तप है, धनंजय है, सारी विद्या ब्रह्मास्त्र तक सब जानता है। जरा भी किसी ने हू किया तो तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता है, लेकिन सारे आवेग वेग दुख सबको सहन कर रहा है, सहनशीलता। भक्त का लक्षण होता है ना वैराग्य विद्या और भक्ति, तो भक्ति का लक्ष्य का लक्षण है सहनशीलता। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ये सब इतने गुण वैराग्य है, विद्या है, आत्मा का है, जानता है, सब कुछ है, इसलिए अब वो श्रेष्ठ सद्गुणी है। इसलिए इस श्लोक में प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि अर्जुन सद्गुणी सद्विचारी सात्विक है समस्त दैवी गुणों में। क्यों? अभी तक अर्जुन के बारे में हम क्या सोच रहे थे? मोह में फंसा, सही बात, मोह में फंसा हुआ है, गलत झूठ नहीं है, फंसा हुआ है, परंतु जो मूलतः प्रवृत्ति है वो दिव्य गुण के पास। तो दिव्य गुण वाले व्यक्ति के ऊपर कभी कभी मोह हावी भी हो गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ भी हावी भी हो गया, तो वो सहन कर सकता है। लेकिन वो सहन करने के लिए वो क्या करता है? गुरु के पास, भगवान के पास जाता, आध्यात्मिक गुरु के पास जाता, अर्जुन कृष्ण के पास गए। अब वो कैसे गए वो अगले श्लोक में, गुरु के पास गए, गुरु के पास या भगवान के पास किस लिए गए? हे भगवान बहुत परेशानी है, लॉटरी का टिकट दे दो, धंधे को ठीक कर दो, शारीरिक वेदनाओं को कम कर दो, भगवान सब कर दो, मेरी इच्छा है पूर्ण कर दो, धर्म देही क्रम देही क्या है वो ऐसा कुछ है ना, ये देही वो देही देही। परंतु भगवान के पास इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए जाना चाहिए। अब देखिए अर्जुन अब भगवान के पास जाएंगे अगले शुक्रवार को, वो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं जाएंगे, वो किस लिए जाएंगे? इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए जाएंगे। देखिए आप अपने श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।